हमारे बीच में पहुंचे हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी। हम उनका एक हाथ की ताली से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। भ्राता रामनाथ जी पिछले 45 वर्षों से बाबा के चुने हुए रत्न हैं। आप 45 वर्षों से बाबा की मुरली महावाक्यों का मनन चिंतन अध्ययन कर रहे हैं, अर्थात ज्ञान में चलते हुए आपको 45 वर्ष हो चुके हैं और विश्वव्यापी सेवाओं के लिए समर्पित हुए आपको 40 वर्ष हो चुके हैं। बाबा के बेहद घर में मधुबन में रहकर आप देश विदेश की सेवाएं करते रहे हैं। आपका अभिरुचि योग पर है, विशेष आप योग में देश विदेश की आत्माओं की ज्योति जगाते हैं और बाबा का प्यारा लाडला सहयोगी स्नेही बनाते हैं। आज आप हमको प्रकाश डालेंगे स्वमान और सम्मान के द्वारा सर्व समस्याओं का समाधान। तो हम निवेदन करते हैं भ्राता जी से कि हमें मार्गदर्शन प्रदान करें। ओम शांति।
ओम शांति। आज का विषय दिया भेंजे ने कौन सा, स्वमान और सम्मान। हम बच्चों का स्वमान क्या है, हमारा मान क्या है, हम किसके बच्चे हैं। कोई कहेगा ना ये मिनिस्टर का बच्चा है, राजा का बच्चा है ना, राजकुमार है, तो हम किसके हैं। सर्वशक्तिवान शुभ बाबा के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिवान है ना। पहले फिर ब्रह्मा मुख से ज्ञान मिला, ब्राह्मण है। दुनिया में बहुत लोग कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, तो हम कौन से ब्राह्मण हैं। हाँ है ना, तो वो नशा स्मृति, तो चिंतन चाहिए। सिर्फ रिपीटेशन नहीं है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसको समान नहीं कहते। तो वह चिंतन, जैसे राम राम कहते ना भक्ति में, ऐसा हो गया, उससे क्या होगा। तो एक समान ले लो और बैठ करके सोचो, खाना खा रहे हो, स्नान करते हो, सब्जी काटते हो, गाड़ी चलाते हो, खेती में काम करते हो, हर कर्म करते समय मन में चिंतन चले, मैं कौन, सर्वशक्तिवान, कौन सी सर्वशक्ति है मेरे पास, कौन सी, मैंने किस शक्ति पर अधिकार प्राप्त किया है। आप कह सकते हो मेरे इस शक्ति पर अधिकार है, जो बाप की अमानत है वो मेरी अमानत है। बाबा ने कहा बाप समान बनो, तो बाप के पास कौन सी शक्तियां है, पवित्रता का सागर है। एक एक शक्ति ले लो, तो पूछ लो क्या मेरे जीवन में ये पवित्रता की शक्ति आई, कितना परसेंटेज आई, 1%, 10%, 50%। पवित्रता किसको कहेंगे, तन स्वच्छ, किसी के में बाजू में बैठो बास आते नहीं, देवताओं के शरीर से सुगंध, कल जाके देवता बनना है, यहां से संस्कार डालना है, शरीर स्वच्छ, किसी के बाजू में बैठो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे विचार मन में, स्वच्छ विचार चलते हैं, मन स्वच्छ है। फिर किसी के घर में जाओ, घर स्वच्छ, मक्खी नहीं, मच्छर नहीं है ना, ग्रस्त आश्रम का, उसमें भी पवित्र ग्रस्त आश्रम, घर में स्वच्छता, खाना, हमारे बोल, बोल में एक भी शब्द दूसरों को दुख देने वाले नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे है ना। तो एक ये पवित्रता किस बोल में, दृष्टि में, किसी को भी देख लो कौन है, सभी शुभ बाबा के बच्चे हैं, समझ है। हर एक को देखते ही पवित्रता किसको, एक एक बाबा की शक्ति लो। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान, सिर्फ रिपीटेशन करते रहना नहीं, सोचते नहीं रहना, उसको स्पष्ट करो किस पर मेरा अधिकार है। एक शक्ति ले लो कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में नंबर वन पवित्रता है, नंबर वन राजयोग है। अगर किसी ने शादी नहीं किया उसको पवित्र नहीं कहते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। ऐसे लाखों ब्रह्मचारी है जंगल में रहते, सत्युग में आएंगे। आज मीरा ने, आज बाबा ने याद किया, मीरा क्या थी, किसके लिए पवित्र बनी, क्या सत्युग में आएंगी? तो पवित्रता किसको कहते हैं, इसका सोचना चिंतन है। कर्म कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कपड़े धोते हो, घूमने जाते हो, गाड़ी चलाते हो, ट्रेन में आराम से बैठे हो, नींद नहीं आ रही, सोए हो, आंखें बंद है, लेकिन चिंतन। आज बाबा ने कहा सारी रात भी नींद न आए कोई अर्ज नहीं, शरीर को जरूरत नहीं है, चिंतन चल रहा है, मैं किसका बच्चा हूं। तो उसका चिंतन करते करते उसी स्वरूप में उस शक्ति को अपने अंदर चेकिंग करो कि मेरा जीवन कितना पवित्र है, भगवान शिव बाबा कौन, शांति का सागर है, मेरा मन मेरे जीवन में कितनी शांति है या अशांति, मन में व्यर्थ विकल्प चलते हैं, किसी ने कुछ कहा तुरंत गुस्सा आता है। भगवान के बच्चे कहेंगे, सर्वशक्तिवान के बच्चे कहेंगे, पूछ लो तो कितना परसेंटेज क्रोध पर मैंने अधिकार प्राप्त किया है, 1%, 10%। कल बाबा ने कहा था रेस, योग की रेस है ना, और वो भी श्रीमत के अनुसार, नहीं कहीं से भी जाओ नहीं, रास्ता होती इसी रास्ते पर चलना है ना। तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री है। यहां भी आप अपने आप से पूछो कि क्रोध पर मेरा कितना कंट्रोल है, एकदम 100% होना चाहिए, नहीं, स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट कहते हैं, धीरे धीरे, एकदम फास्ट नहीं होगा, आज ज्ञान सुना आज ही कंप्लीट होना चाहिए, ऐसे चमत्कार नहीं, धीरे धीरे। हां हम कर रहे हैं, कहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि बाबा ने पहले से समय बताया है, बच्चे अचानक परिवर्तन होगा, तो हम कहां होंगे, पुरुषार्थ में लगे रहेंगे कि प्राप्ति कहां तक है। तो स्वयं का चेकिंग करने का स्वमान है ना, भगवान के बच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के मुख में क्या रहता है, सदा ज्ञान, हर एक से बात करो, मिलते ही आपके मुख से ज्ञान रतन निकलना चाहिए, कोई भी बात करो किसी भी संसार की, बीच बीच में आना चाहिए, आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ऐसे कहा था, माना आपके वाणी में आपके स्मृति में बाबा और बाबा का ज्ञान है, उसको कहते हैं ब्राह्मण। तो पूछो मैं कौन, किसकी आत्मा हूं, कौन सी शक्ति है मेरे पास। सर्वशक्तिवान के बच्चे कोई कहेंगे, आप कह सकते हो कि इसको बताओ ये राजा का बच्चा है, ऐसे कहो, ये ऐसे नशा नहीं है, रियलिटी होनी चाहिए ना। आप पूछो मेरे किस शक्ति पर मेरा अधिकार है, सर्वशक्तियां है उसमें से एक शक्ति, दो शक्ति, चेकिंग, ये चिंतन है। अगर ये स्मृति में है, चिंतन चलता है रोज कर्म करते, ये योग में नहीं, योग अलग, ये स्वमान चलते फिरते कर्म करते, तो अपना कर्म श्रेष्ठ कर्म होना चाहिए, श्रेष्ठ स्मृति में रहकर अगर कोई भी काम करते हो आप, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। अगर कर्म करते समय स्मृति में है, इस भाई ने मुझे कल गुस्सा किया था, यही था वो, ये स्मृति में रखकर इनसे इसको देख रहे हो, बात कर रहे हो, जो कर्म कर रहे हो, खाना बना रहे हो आप, कपड़े धोते हो, स्मृति में क्या है, तो कर्म श्रेष्ठ नहीं होगा, भ्रष्ट होता है। खाना बनाते हो, कोई भी कर्म करो, कर्म श्रेष्ठ कैसे होगा, सब कहते हैं कि कर्मों के अंदर दिव्यता चाहिए, श्रेष्ठता चाहिए, कहां से आएंगे वो। तो बाबा का नाम है, शिव बाबा का, हमारा बाप का नाम है भाग्य विधाता, बच्चों का भाग्य बनाने की विधि बताता है, अपने आप भाग्य ऊपर से नहीं देगा, विधि बताता है। क्या विधि, बच्चे कोई भी काम करो वो कर्म किस स्मृति में, जैसे स्मृति जैसे अंदर वृत्ति, ऐसी दृष्टि रहती है, भगवान का बच्चा है। तब कहा, परिवार में रहते हो, मेरा पति नहीं, मेरे बच्चे नहीं। आपका पति कहां तक है, बच्चे आपके कहां तक है? सत्युग में भी लक्ष्मी नारायण थे, है ना? उन तो सोने का शरीर तो नहीं था, सोने का था, पांच तत्वों का तो ऐसी शरीर था, चार हाथ तो नहीं थे, शरीर ही था, सिर्फ स्मृति थी। भगवान के बच्चे हैं, तो ये स्मृति है। तब कहते हैं उनके प्रति जैसे बाबा के प्रति सम्मान है, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, भगवान है, भगवान के बच्चे हैं, तो उन्होंने कुछ भी कहा उनके प्रति सम्मान है, रिस्पेक्ट है, तब संसार में कोई भी समस्या नहीं। मेरा पति नहीं, मेरे बच्चे नहीं, भगवान के बच्चे समझ के सेवा करो। अगर ये एक ही स्मृति स्वमान अपने अंदर है तो सारे संसार में समस्या का कारण क्या है? ये कौन है कहने वाला मुझको? भगवान का बच्चा है, इसके पास क्या है? ये कौन है? भगवान का। मेरा पति लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, कोई भी हो, ये अगर स्मृति से, सिर्फ बाबा आकर के किसी को अपने आप सोने का ताज नहीं देता है, अपने आप कुछ नहीं देता है। जैसे स्मृति भाग्य बनाने की विधि बताता है, बच्चे संसार में रहो, गृहस्थ खराब नहीं, नंबर वन गृहस्थ धर्म है, लेकिन सिर्फ स्मृति को चेंज। जैसे स्मृति आपके बोल, आपके व्यवहार, आपके कर्म, आपके आचरण संसार में समस्या का कारण यह है। मेरा बेटा नहीं सुनता है, मेरी युगल नहीं सुनता, मेरा पति ऐसा करता है, मेरा भाई ऐसा करता है ना? वो कौन आपका भाई? ये बुद्धि में एक शब्द अच्छी तरह से बिठाओ, सब समस्या का हल है। संसार में बहुत सारी समस्या है ना, हर कदम में। अगर आपकी दृष्टि उनके प्रति स्मृति में है कि भगवान के बच्चे, मेरी युगल नहीं, मेरा बेटा नहीं, भगवान का बच्चा, ये स्मृति में रखकर उनको देखते हो, उनसे बात करते हो, अपने आप वो शीतल हो जाता है। कितना आग हो, उस आग के अंदर भी दिव्यता आती है, शीतलता आती है। हमारी भाषा, हमारे बोल, ये स्मृति नहीं रहती है तो क्या करें? तब बाबा कहते, पढ़ेंगे, लिखेंगे, बनेंगे नवाब, है ना? पढ़ाई रोज बाबा दे, स्मृति को जागृत करने के लिए। आज बाबा ने कहा स्लोगन में, बुद्धि हल्की हो, और बुद्धि में क्या हो, महीनता भी हो। अर्थात हर बात ऐसे हल्की नहीं, ये क्या है, बाबा ने क्या कहा, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों चलता है, उसको सोचो भी, ध्यान भी दे दो, ये काम कैसे करना चाहिए, हर बात पर पूरा ध्यान भी दे दो, और समस्या भी है, इसको क्या करना चाहिए, ये समस्या कैसे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन हल्का भारीपन करके नहीं, ये क्यों, ये क्या नहीं, उसका निवारण क्या है। ऐसे नहीं समस्या आएगी आप सोचना नहीं, बाबा बैठा है, ऐसे बेफिक्र बादशाह नहीं, बाबा बैठे ना, हर समस्या, हर परिस्थिति का, आपके जीवन में समस्या है, बहुत सारी समस्या है। जैसे आज शिलू बहन बता रही थी, एक माता ऐसी करती है, हर एक के घर में, हर एक के पास, इसी का नाम कलयुग है। कोई भी एक व्यक्ति भी न होगा जिसको बीमारी नहीं है, न समस्या है। अगर ऐसा होता तो इधर आता ही नहीं है वो, है ना? भगवान डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, बीमार होगा तब जाएंगे ना, भगवान के पास क्यों आए हो? उसने कहा, मैं पतित को पावन करने आया हूं, अंदर कुछ है तो जीवन में बाहर आता है, कर्मों में, बोल में, व्यवहार में, संबंध में, किसी न किसी प्रकार से, नहीं तो इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है, कोई भी किसी का एक बाल भी हिला नहीं सकता है, इतनी स्वतंत्रता है, किसी का भी एक बाल भी कोई हिला नहीं सकता है। आप कहेंगे ये क्यों ऐसा, ये क्यों ऐसा, ये कैसा, ये मेरे कर्मों का फल है। आप मेरे कर्म कहते हो, दिखाओ कहां मेरे कर्म है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुखड़ा देख ले प्राणी, कौन सा मुखड़ा? ये मुखड़ा तो आईने में दिखाई देगा, है ना? आपका मुखड़ा कहां दिखाई देगा? हाँ, दिखा देखा आप कौन सी हो, देवात्मा हो, महात्मा हो, पुण्य आत्मा, अपने आप को बताओ, कौन से दर्पण में देखेंगे, कैसे दिखा आप बता सकते हो? डॉक्टर के पास जाओ, तुरंत आपको एक्सरे निकाल के दिखाता है ना, कौन सी बीमारी, आप कहेंगे मुझे कोई बीमारी नहीं है, तो डॉक्टर दिखाता है ना कि नहीं दिखाता है, तो आप बता सकते हो मैं कौन सी आत्मा हूं, देवात्मा हूं, महात्मा हूं, पापात्मा हूं, पुण्यात्मा हूं, कौन सी आत्मा हूं, सत्युगी है, त्रेता की है, द्वापर की है, कलयुग की है, कौन सी हूं? तब कहते मुखड़ा देख लो, कैसे देखे, कौन सा ज्ञान का दर्पण, ज्ञान तो सुना, जब आप रात को सोते हो आंखें बंद करके सोते हो, स्वप्न कहां से आते हैं, है ना, हर एक अपने आप को देखो, मैं कौन सा, क्या भरा है मेरे अंदर, स्वप्न बताता है। अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हो, कहीं से नहीं आए, बाहर से तो नहीं आए, आंखें बंद है, ना सुनते हो ना देखते हो, आत्मा ने शरीर में आने के बाद जो जो कर्म किया सब भरा हुआ है, उसको देखना है, दिखाई देता है। और जो कहता है आज से एक महीने के अंदर एक दिन भी पांच विकारों के स्वप्न नहीं आए, उसका नाम है कर्मातीत आत्मा है, उसका नाम है फरिश्ता, फर्श के कोई भी रिश्ता नहीं है, पांच तत्वों का कोई रिश्ता नहीं है, फरिश्ता, उसका नाम कर्मातीत, उसको कहते एडवांस आत्मा है। तब बाबा ने कहा अपने आप को देख लो, मैं कौन सी आत्मा हूं, फिर उसका ट्रीटमेंट। हाँ मुझे गुस्सा आता है, खराब नहीं है, संस्कार है, कोई अर्जन नहीं, तो उसको कैसे शांत करना चाहिए, कैसे मिटाना चाहिए, चिंतन, मैं कौन सी आत्मा हूं, मैं किसका बच्चा हूं और क्या कर रहा हूं। स्व का दर्शन करो रोज, अपने आप से पूछो ये मेरे अंदर ये विचार क्यों आ रहा है, उसका निवारण क्या है, क्यों क्यों करते रहना नहीं, निवारण क्या है, बाबा बताता है। बच्चे ये स्वमान याद रखो, मैं ब्राह्मण आत्मा हूं, मेरे कपड़े, मेरा चलन, मेरा खाना, मेरा बोलना कैसे होना चाहिए, आचरण, अपने आप ब्राह्मण तो नहीं बनेगा ना, नामधारी तो नहीं हो, सत्य हो, है ना, तो अपने आप, तो इसको कहा है स्वमान, एक एक बाबा ले लो, बाबा कहता है स्वमान धारण करो, याद करो रोज, तो स्वमान रख करके रिपीट नहीं करना, सिर्फ स्मृति में भी नहीं, चिंतन करना उसका, इस शक्ति को मैं कैसे प्राप्त करूं, समझ में आया, तो ये चिंतन चाहिए, तब तो वो शक्ति आएंगी। कर्म करते सब कुछ संसार में करते रहो, गाड़ी चलाओ, खेती में काम करो, बिजनेस करो, इस स्मृति में बार बार चेकिंग करना चाहिए। अगर ये स्वमान में है तो हमारे जीवन में अपने आप औरों के प्रति सम्मान, ये भगवान का बच्चा है, ये काला, ये गोरा, ये लंगड़ा, ये अंधा, ये दुश्मन नहीं, भगवान के बच्चे, औरों के प्रति सबसे पहले परिवार से शुरू करो, घर में भगवान का बच्चा समझ के बच्चों की पालना करो, पति को देखते ही सवेरे उठते ही शुभ बाबा का बच्चा है, मेरा पति नहीं, हाँ किसी को बताने के लिए, ये कौन, नाम के लिए, नाम 12 दिन के बाद डालते हैं, है ना, पहले जन्मते पति बन के नहीं, अब जन्मते नहीं आया, भगवान का बच्चा है, पति मेरी युगल नहीं, बताने के लिए, किसी को बताने के लिए बताओ, तो अपने आप परिवार के प्रति सम्मान आएगा। तो जहां सम्मान है, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, ये कौन है, इस लोग का अपने को और औरों को पहचानो, समझो, ये ज्ञान है। भावना निषिद्ध, भावना जो होती है ना अंधी होती है, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, हाँ ये बहुत अच्छे है, ऐसे नहीं, किसमें बहुत अच्छे है, किसके लिए बहुत अच्छा है ये, हाँ शिव बाबा ने देखो इनको कितना शक्तिशाली बनाया, शिव बाबा ने इनके अंदर कितनी शक्ति भरी है, भगवान का बच्चा है, इससे बहुत अच्छा है, तो नाम किसका है, उधर महिमा उसकी, उसने बनाया है ना, उसकी रचना कितनी सुंदर, तो वो चिंतन चलता है, तो हरेक का सम्मान, हरेक के प्रति आपके अंदर, घर में, परिवार में, व्यवहार में, मैं आपको अपना अनुभव बताता हूं, देख लो, सिर्फ कहने नहीं, हम आज करके आए। एक दिन मैं ओम शांति भवन से आ रहा था मुरली क्लास के बाद, दादी प्रकाशमय आंगन में बैठती थी, यहां बाहरी कुर्सी डालकर, तो मैं आ रहा था, दादी ने कहा आओ इधर, दादी मुरली सुना के तुरंत आके बाहर बैठे थे। हम मुरली सुनने के बाद और कोई मिलता है, आते आते पीछे गार्डन था, वहां थोड़ा वॉकिंग भी करके आते थे आधा घंटे के बाद। दादी ने देखा ये आ रहा है क्लास से, इधर आओ। ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। दादी को पता ही नहीं है ये कैसे करना है, कुछ ये तो झट पता नहीं है ये कैसा करना होता है। कहते ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना, एक सेकंड, हाँ जी, एक ही सेकंड। ऐसे गया पीछे से, फिर से वापस आया, इधर पीछे से गया, किचन से वापस आया, एक मिनट लगा। दादी ये ऐसे करेंगे तो ऐसा होगा। अच्छा ऐसा होगा, नहीं नहीं नहीं, आपको जैसे चेक करो, एक मिनट पहले बता सकता था ये ऐसा नहीं, ये ऐसा करना चाहिए, तुरंत जवाब दे सकते थे। तब का औरों का गलत शब्द होते हुए भी औरों को मान दे दो, उनके बोल का सम्मान रखो, बड़े हो छोटे हो, ठीक है आप उनके अनुसार वो सही है, वो गलत नहीं बोल रहे। चोरी करने वाला कोई भी गलत समझ के चोरी करता है? मैं गलत कर रहा हूं, गलत कर्म करने वाला कोई भी गलत कहता है? झूठ बोलने वाला मैं गलत समझता है? हमको लगता है ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, उसके लिए वो सही है, गलत नहीं उसके लिए। देखो हमको एक बार आर्य समाज जी मिले, 4 घंटा डिस्कशन करने इधर आए और कहने लगे आप भगवान को सर्वव्यापी कहते हो। हमने कहा किसने कहा? हमने तो नहीं कहा, नहीं आपकी किताबों में सब ने कहा, सबने कहा ना, आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, हमने तो नहीं आपको कहा। आप जो कहते हो भगवान सर्वव्यापी सही है, आपकी गलती नहीं है। तो उसको लगा, खुश हो गया। और वो 10 साल इस ज्ञान में चलता था, जाके बहुत बड़ा साइंटिस्ट है वो, उसमें मिला था ऐसे 4 बड़े बड़े इंजीनियर्स थे, तो आए बहुत डिस्कशन करने लगे। हमने कहा हमने तो आपको नहीं कहा, किताबों में न्यूज़पेपर में कुछ आता है, वो नहीं, आप मेरे से बात करो, मुझे पूछो, आप जो कहते हो भगवान सर्वव्यापी सही है, गलत नहीं है। तो खुश हो गया, अरे आप तो अलग ही बोल रहे हैं। हमने कहा हाँ सत्य है ये। फिर कहा आपने जो समझा वो सही है, आपको और कुछ समझना है, इसलिए आप आए हो, और क्या समझना है? तब का इस ब्रह्मांड में 2 शक्तियां है, शास्त्रों में भी कहा प्रकृति और पुरुष, साइंस ने भी कहा फिजिकल एनर्जी एंड मेटाफिजिकल एनर्जी, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर की जो फिजिकल एनर्जी हो सर्वत्र है, आप गलत नहीं सही है। आपने प्राण को ही सब कुछ समझा, श्वास खत्म हो गया सब खत्म हो गया, आपकी मान्यता गलत नहीं है, आपकी पढ़ाई खराब नहीं है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन और कुछ जानो। तो क्या है वो? हमने के और एक चैतन्य शक्ति है, किसने जन्म लिया, कौन शरीर छोड़ के गया, किसके लिए आप श्राद्ध मनाते हो, जब आंखें बंद करके सोते हो कौन देखता है, 4 घंटा चुप, एक शब्द नहीं बोला, कितने प्रश्न लेके आए थे। तो उसको कहा कि समझाने के, कोई भी गलत नहीं बोल रहा है, अगर आपको लगता है गलत बोल रहा है, हाँ जी, उसको पहले हाँ जी बोलो, आप गलत नहीं हो, स्वीकार करो। यहां भी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, वो कहीं से नहीं आती है, हमारे किए हुए कर्म ही, पहले स्वीकार करो, ठीक है ये समझाओ ये मेरे कर्मों का फल है, ये इस रूप में गुस्सा करने के रूप में ये आया है, ये बच्चा जन्मते बीमार लंगड़ा अंधा 24 घंटा उसकी सेवा करना पड़ता है, भगवान ने नहीं दिया, मेरे कर्म थे उसके लिए ऐसा आया परिवार में, है ना। ये स्वीकार करना है, समझ से, भावना से नहीं, समझो क्यों ये कैसे क्यों कर रहे हैं। जब समझ में आया ये मेरे कर्म, हाँ मुझे इसको मिटाना है। हम कर्म बंधन बनाने के लिए यहां नहीं आए, हम कर्म बंधनों से मुक्त होने के लिए आए कि और कर्म बंधन बनाना चाहिए। उसने एक शब्द बोला, आप और 4 शब्द बोलो, हाँ बोलो, बोल सकते हो, है ना। कर्म बंधन आए, कर्म बंधन बन जाता है, हम कर्मों से, हाँ उसको बोलने दो, वो सब कुछ करेंगे। तब आज बाबा ने कहा मीरा को क्या किया, विष भी दिया, उसके अंदर क्या था, नहीं मुझे एक बल एक भरोसा। तो अगर हमको शिव बाबा पर पूरा विश्वास है, हम भगवान के बच्चे ये स्मृति है, तो सब कुछ स्वीकार है। और ये जो सब जो मेरे सामने दिखाई देते हैं ये सब भगवान के बच्चे हैं। स्वीकार है। ये स्वमान एक अर्थ सहित समझाओ। बहुत ज्ञानी चाहिए, बहुत सुनते हैं ना, तो आचरण में कुछ भी नहीं आता है। थोड़ा सा खा लो, हजम करो। बहुत खाया हजम नहीं हुआ, वो बीमार करेगा, डाइजेस्ट नहीं किया, पॉइजन बनेगा, है ना। हजम करना, ईट लेस डाइजेस्ट मोर। यहां भी थोड़ा सा कुछ सुनो, सारी मुरली में से आपको जो अच्छा लगता है एक शब्द ले लो, सारा दिन चिंतन करो, वर्णन करो, औरों को भी दान करो, तब चिंतन चलेगा अंदर ही अंदर। ऐसे रोज 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके जीवन में आएगा, आचरण में आएगा। तो ये स्मृति को दिव्य बनाता है, बुद्धि को स्वच्छ बनाता है। नहीं तो आप देखो, एक घंटा चेकिंग करो और देख लो मेरे मन में किस प्रकार के विचार चलते हैं। एक एक घंटा नोट करो, एक ही दिन, तब आप निर्णय कर सकते हो मैं कौन सी आत्मा हूं, किस ग्रेड की आत्मा हूं। तब आए हो कि परिवर्तन करने के लिए। हाँ, मेरे अंदर ये भरा हुआ है, इसको मिटाना है, इसको परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले स्मृति, स्मृति के लिए ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान जो रोज बाबा मुरली सुनाता है उसमें से एक मुरली के पॉइंट साथ में रखो। बहुत सुनना चाहिए, बहुत नहीं हो सकता है, इतनी बुद्धि स्वच्छ नहीं है। तब बाबा ने आज मुरली में कहा, पत्थर बुद्धि को मैं पारस बुद्धि बनाने आया हूं। अपने अपने चमत्कार नहीं करेगा, बाबा मेरा पत्थर है ठीक करो, है ना, ऐसे नहीं, विधि बताता है। बच्चे एक ज्ञान रतन धारण करो, अपने आप धारण नहीं होगा, उसकी विधि भी। ज्ञान नोट करो, चिंतन करो, वर्णन करो, एक दो तीन दस लोगों को सुनाते जाओ, तब याद रहेगा। ऐसे एक एक बूंद पढ़ते पढ़ते बुद्धि के अंदर ये जमा होगा, उसको कहते बुद्धिवान, ज्ञानी तो आत्मा। समझ में आया? अगर ज्ञान अंदर है, जब कर्म सवेरे से रात तक करना है, कर्म करते करते समस्या आती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको उदाहरण बताया, हमारे सामने भी समस्या आई, हमने पहले एक मिनट पहले कभी सोचा भी नहीं था, आई तुरंत, अंदर ज्ञान है तो बुद्धि तुरंत काम करती है कि क्या किया, हाँ गलत होते हुए भी कुछ भी पता नहीं, हम तुरंत बोल सकता था, दादी ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये ऐसे करना है। आप सोचो, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कुछ बोले, आप क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट करेंगे कि मान लेंगे? स्मृति, अगर स्मृति के अंदर है, हाँ जी ठीक है, गलत है, झूठ बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो गलत नहीं है, वो गलत है, उसको सही लग रहा है, लेकिन मुझे समझ है, होश है, मैं कौन और ये कौन। एक सेकंड ठहरो, घर में पति बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गलत बोलते हैं, बिजनेस में पैसा नहीं देता है कोई, बहुत कुछ गलत कर रहा है, हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं, कलयुग की निशानी है ये, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा व्यवहार, मेरे बोल, मेरे कर्म क्या होना चाहिए। तब कहेंगे ये स्वमान सिर्फ शब्द ज्ञान के लिए नहीं, आचरण में आएगा। चिंतन करो, आचरण में लाओ, एक एक ही, तब हरेक के प्रति ये स्वमान जागृत, सम्मान जागृत होगा, रिस्पेक्ट होगा, भगवान के बच्चे हैं। तो उसका उदाहरण दिया, घर में बच्चे पति सब लोग झूठ बोलते हैं, समझ, तभी तो क्लैश होता है, आवाज क्यों आ रहा है, दो बर्तन आवाज क्यों आता है, आवाज आएगा ही, है ना। हाँ, आप कहेंगे सबने ऐसे मिलना चाहिए, ऐसे संसार होना चाहिए, ऐसे परिवार होना चाहिए, वो अभी नहीं सत्युग में जाने के बाद, और वो भी जिसने यहां संस्कार भरा तब आएंगे, नहीं तो कहां जाएंगे, ऊपर जाके बैठ के फिर यहां ही आना है, है ना। अगर परिवर्तन नहीं किया तो फिर से ऊपर जाके बैठेंगे, फिर कहां आएंगे, सत्युग में आएंगे, पैता में आएंगे, फिर यहां ही आना पड़ेगा। तो परिवर्तन हरेक आत्मा को चांस मिलता है कि बच्चे अपने को संगम पर, भाग्य विधाता बाबा ने कहा, बच्चे आपके हाथ में कलम दिया है, जितनी लंबी रेखा खींचना चाहते हो उतना खींच सकते हो, किस आधार से, ज्ञान के, कलम लिखता है, क्या लिखेंगे, अंदर ज्ञान हो पेपर आएगा तो पेपर लिखेंगे ना, अगर पढ़ाई नहीं किया तो पेपर क्या लिखेंगे, समस्या नहीं आएगा ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा। तब कहा समस्या के लिए स्वमान, बहुत सारे बाबा ने स्वमान दिया है, एक एक स्वमान ले लो, एक एक दिन ले लो, नहीं तो एक हफ्ते तक एक एक स्वमान ले लो, चिंतन करना उसका, सिर्फ रिपीटेशन नहीं, सिर्फ वर्णन नहीं। और वो योग में बैठे नहीं, चलते फिरते कर्म करते खाते, योग की व्यवस्था बाबा ने बताया, वो भी मिक्स करते बहुत। याद, योग और तपस्या तीन चीजें हैं। याद 8 घंटा करो कहा है ना, और तपस्या सवेरे और शाम को निराकार स्थिति में स्थित होकर निराकार बाप को याद करना चाहिए। क्यों? बाबा ने कहा मैं पतित आत्मा को पावन करने आया हूं, आत्मा के अंदर पाप है, उसको मिटाने के लिए उसकी शक्ति चाहिए, योग अग्नि चाहिए। और चलते फिरते कर्म करते करते स्मृति है, इनको कोई मिले, हाँ आज बाबा ने ये कहा था, कोई दिखाई दिया दूर है पहचान नहीं है, उनको देखते मन में शुभ भावना, शुभ बाबा या आपका बच्चे है, इनका कल्याण करो, इनको सद्बुद्धि दे दो, इनको शांति की शक्ति दे दो। चलते फिरते कोई नजदीक मिला, दान करो, ज्ञान दान करो। समझ में आया कि ये 8-10 घंटा कर सकते हो, कोई स्वमान ले लो, चिंतन कर सकते हो, मन को बिजी रखो, गीत सुनते रहो, क्लास सुनते रहो, कर्म करते करते अपने मन को बिजी रखो, नहीं तो खाली मन शैतान का काम करता, या नींद आएंगी या व्यर्थ विचार चलेगा। अगर मन में किसी ने थोड़ा सा गुस्सा किया, जाके सो जाओ, नींद आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? हाँ, मन बिजी है, खाली मन हो गया तो सारा दिन कर्मों में मन को खाली नहीं रखना। फिर बुद्धि, एक ही मन नहीं, बुद्धि के अंदर भी स्मृति, बाबा ने जो ज्ञान सुनाया वो अंदर भरते हो, बार बार इनको सुनाते रहते हो तो बुद्धि जागृत होती है, नहीं तो हमारी बुद्धि डल हो गई है। सुनने तक अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बाहर जाते ही पूछो क्या सुनाया था बाबा ने, याद ही नहीं है। क्यों? सुनने कन रस है, ये भक्ति मार्ग की आदत हुई है हमको, सुनना है। यहां सुनने भक्ति करने के बाद ये फल ये मिला आपको, है ना, तो यहां आचरण में आना चाहिए। हमने देखा पंजाब में एक जगह पर साहेब मंदिर बहन जी एक सेंटर में, सेंटर के बाहर एक सुंदर कांच का मंदिर बनाया था। आप कहेंगे मंदिर में इतने भीड़ है लोगों की और बाबा के घर में 5-10 ही आते, क्यों? आप कहते भगवान आया, भगवान के पास तो और भीड़ होनी चाहिए ना, मंदिर में तो नहीं मूर्ति है तो वहां इतनी भीड़, और यहां बाबा के घर में भीड़ नहीं, भगवान आया तो भीड़ होनी चाहिए ना, क्यों नहीं है बताओ? तो करना कुछ नहीं है और यहां करना है, यहां भी तो हम सुनते ही है ना मुरली। हाँ देख लो वहां क्या हो गया, मंदिर में बहन जी मुझे रात को 9 बजे ले गए, बहन जी कोई नहीं होंगे तब जाएंगे, नजदीक ही था, कोई नहीं थे, वो सुंदर मंदिर बना ग्लास से, तो मूर्ति के सामने हम पीछे इतने लास्ट में खड़े हैं देख रहे थे, तब तक आगे से ही एक भाई आके मूर्ति के सामने खड़ा हो गया, बहन जी हमको छोड़ कर गए, उसको देखने लगे, भैया आजकल आप सेंटर में नहीं आते हो? तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा बहन जी ये देवी है ना बहुत अच्छी है, मैं शराब पी के आता हूँ, लड़ाई झगड़ा करके भी आता हूँ, हाँ किसी को लूट के भी आता हूँ, लेकिन ये देवी कभी कुछ नहीं बोलती है, इसलिए मैं रोज यहाँ आता हूँ, और एक मंदिर में सेंटर में एक देवी है, वहां जाते दिल धड़कता है, आज गुस्सा करके आए हो, आज किसी को लूट करके आए हो, तो बाबा की मुरली सुनते दिल धड़कता है, इसलिए मैं वहां आता था तो इसलिए वहां नहीं आ रहा हूं, यहां रोज मैं आता हूं, ये देवी कुछ नहीं बोलती, देखना ये हाल है ना। तो यहां तब कहा यहां परिवर्तन है, तब भगवान के 5 ही पांडव थे, 5 ही बच्चे है ना, तो इसलिए मंदिर में भीड़ क्यों, वहां करना नहीं, जैसे माता जी कह रहे थे सुनना है ना, यहां नहीं, यहां सुनने नहीं, अगर आप मुरली सुनते सुनते क्यों नहीं आते हो, रोज सुनते हो, वहां जाते दिल धड़कता, आज मैंने गुस्सा किया था, आज सेंटर में नहीं जाना, नहीं आज मैंने किसी को लूटा था, हाँ तो उधर जाते ही बैठते ही बाबा मुरली में सुनाता है तुरंत, बच्चे क्रोध किया तो क्या होगा, तो दिल धड़केगा, शांति मिलेंगी नहीं, आज कुछ गलत पाप किया है, आज जाना नहीं है, क्यों नहीं आ रहे हो, तो ये पढ़ाई है, पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नव आपका, तब कोटो में कोई है। तो इसके लिए इन पापों से बचना चाहते हो तो समान याद रखो, उसका अच्छी तरह से चिंतन घोटो, नशा चढ़ेगा, चिंतन चलेगा। लेकिन फिर योग में अमृत वेले शाम को बैठते हो तो मन स्वच्छ है, बुद्धि स्वच्छ है, कोई इधर उधर की बात नहीं आए, तो बैठते ही जो बाबा कहता है एक सेकंड में परम धाम, एक सेकंड नहीं 10 सेकंड ले लो, आधा घंटा ले लो, एक जगह पर बैठे, मन बुद्धि एकाग्र, एक ही बाप का चिंतन, आप और बाप, दूसरा कोई नहीं आता है। बाबा ने विधि बताया, बच्चे आत्मा समझ मुझे याद करो, और कुछ नहीं कहा, खाना नहीं खाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, नहीं, अपने आप सब कुछ भरेगा। सर्वशक्तिवान बच्चों को सर्वशक्ति देने आया है, लेकिन किसको, शरीर को नहीं। शरीर का भान अगर होके बैठते हो, एक घंटा योग में बैठो, मैं 4 घंटा बैठा था, 1 मिनट भी बुद्धि ऊपर गई नहीं, इधर ही चिंतन कर रही थी। बाबा देने आया है, पात्र चाहिए, है ना, पात्र को देंगे ना, तो पूछो मैं योग्य पात्र हूं, तो पात्र होके बैठो। देने वाला, दान देने वाला आया हुआ है। तब बाबा ने कहा, आज दाता हूं मैं, भाग्य विदाता हूं, वरदाता हूं, देने आया हूं, लेने वाला पात्र चाहिए। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, सर्वशक्तियां भर देगा। संभव है कि कठिन है? संसार में परिवार में चलते हुए संभव है? सब कुछ है करना, यही संसार में गृहस्थ में रहो। गृहस्थ खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है। आप अपने आप को पूछो, पति बच्चे, हाँ कुछ भी होता है तो मुझे कर, अपनी तैयारी करो, अपने को पढ़ाते जाओ रोज, इनको ठीक करना चाहिए, नहीं मुझे ठीक करना है, मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा है ना, मुझे चेंज करना है, इनको भी चेंज करना है। आप कर सकते हो कोई? देखो महाभारत सुना आपने, महाभारत में देख लो, इंद्र सभा में सबके बीच में द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा दुशासन, किसी परिवार वाले ने उठकर उसको रोका, द्रौपदी को मदद किया, द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया, वो भी आए, उन्होंने भी द्रौपदी को वस्त्र दिया, दुशासन को रोका। आप क्या कहते हो घर में? पहले तुम चुप रहो। आप क्या कहते हो? बच्चे पति कुछ बोलता है कोई भी, आप कहते हो, आप इसको पहले ठीक करना है, आप पहले चुप हो जाओ, यही कहते हैं ना, क्या कहते हो? तो अभी क्या करना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए? हाँ, ये सीख के जाओ कि हम किसी को भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसी चमत्कार बाबा ने वो जादू की छड़ी नहीं दिया है, स्व परिवर्तन मुझे करना है। देखो लाल लाइट हो गया, हाँ अभी स्वयं का परिवर्तन करने सोचो, मुझे क्या क्या परिवर्तन करना है वो लिख करके बाबा के पास देके जाना, बाबा ये परिवर्तन करेंगे हम 1 साल के अंदर। तो समझ में आया, भगवान भी किसी के कर्म क्षेत्र में इंटरफियर नहीं करता है, नहीं तो भगवान भी उसको रोक सकता था, है ना, नहीं। लेकिन हम चाहते इनको पहले रोको। हरेक तब बाबा मुरली में कहता है, नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, बाबा के बच्चे सभी, तो भी हरेक को स्वतंत्रता है, अच्छा करो गलत करो, गलत करने के लिए बाबा आप इसको रोको नहीं, उसको करने से कौन बनेगा, नहीं तो कौन सेवा करेगा, कौन झाड़ू लगाएगा, सभी राजा बन के बैठ गए तो बाकी कौन करेगा, वो भी चाहिए, है ना। तब बाबा सब कुछ जानता है कि हरेक कर्म करता, तब आपको समझ चाहिए, अगर आपके अंदर समान है, स्मृति है, मैं कौन, हाँ ये नंबर वाला उसको कहते परखने की शक्ति, है ना, हाँ इनके आचरण ऐसा है, हाँ इनका नंबर ऐसा है, स्कूल में पता चलता है टीचर को भी उनको भी कि मेरी पढ़ाई कैसी है, मेरा क्या होगा, नंबर 1 आएगा, नंबर 2 आएगा, नंबर 3 आएगा, हर एक को जानता है। लेकिन वो हमें समझ करके संसार में चलना है। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, देख लो ऐसे हम कमरे में अकेले होते हैं तो यहां दूसरा एक भाई होता है। देखो संसार में आपको गृहस्थ में कैसे चलाना है, एक ज्ञान अलग व्यवहार अलग। तो कभी मैं ऊपर आता हूं तो देखा एक भाई घूम के आता है, मोजा निकाल के चेयर पर रखता है, हाँ बाहर गैलरी है, गैलरी पर खुर्ची होती, बाहर रख सकता है, एक दिन मैं अचानक नीचे से ऊपर आया, देखा अरे कोई हम इधर आए तो कोई ना मिलने आता है, बैठने की जगह नहीं, कुर्सी पर बैठना पड़ता है, मोजा रखा है, हमने निकाल के बाहर रख दिया। वो आया, आपने मेरे मोजा बाहर क्यों रखा? हमने कहा बाहर भी कुर्सी पर रखा है, मिट्टी लगेगी वहां। हमने कहा कुर्सी पर मिट्टी कौन सी? एक दफा बताया। फिर मैं दो दिन के बाद नीचे गया, एक हफ्ते के बाद आया, फिर देखा बाहर रखा। फिर एक तीन चार महीने के बाद आया, फिर भी वही कुर्सी पर, तीन चार महीने का, एक हफ्ते का चेंज हो गया। तो तीन महीने के बाद फिर आया, देखा वहां ही, बोला नहीं। मन में बाबा आपके बच्चे, आपके बच्चों को कौन समझ, मन में संकल्प, इनको कौन समझाएगा, आपके बच्चे आपने समझाना चाहिए। आज तक अब एक साल हो गया बाहर अपने जगह पर बुट में, मोजे कुर्सी पर नहीं रखते। आप भी परिवार में कैसे ये सिखा, इसको एक बार बताना है, बाद में मुख से नहीं, हरेक को अपना समान है, कोई सुनना नहीं चाहता है, कैसे समझाए? मन में संकल्प करो ये बाबा का बच्चा है ना, ऐसे नहीं बताना नहीं, एक बार शिक्षा देनी है। बार बार बताएंगे तो क्या होगा, बताने का पड़ा, शिक्षा देने की भी तरीका है। तो अभी कितना, एक साल हो गया, एक साल के आज तक भी बाहर। तो संसार में आपके सामने भी परीक्षा है, बच्चे नहीं सुनते, पति नहीं सुनता है, चाय पीता है वहां कप रखता है, हाँ वहीं न्यूज़पेपर रखते हैं, फिर गंदगी करके रखते हैं, हाँ करते हैं, है ना। लेकिन एक दफा बताओ बच्चों को, परिवार को एक दफा बताओ, देखो आप सवेरे उठते हो, खटिया को ठीक करके उठो, हाँ बच्चों को समझाओ, बच्चे उठते ऐसे करना चाहिए, हाँ नहीं करते, आप करके दिखाओ एक दो तीन दफा, सिखाना पड़ता है। पति हो बच्चे हो सब सीख के नहीं आए, हाँ फिर भी नहीं करता है तो छोड़ देना, इनका स्वभाव संस्कार ऐसा है, परिवर्तन होने वाला नहीं है, मुझे ही करना है, छोड़ देना है ना। उसको शास्त्रों में कहते हैं साम दंड और भेद, प्यार से समझाओ, थोड़ा सा डराओ, नहीं छोड़ दो, उनका तकदीर उनके हाथ में है, उनका भाग्य उनके हाथ में है, आप कुछ कर सकते हो उसके कारण, आप बोल करके और कुछ करके संसार में अशांति का कारण क्या है, समस्या का कारण क्या है, हमारे एक दूसरे को सम्मान क्यों नहीं है। कहते हो भगवान के बच्चे, कहते दुनिया में भी वसुधैव कुटुंबकम, वन गॉड वन फादर, कहते ना वन गॉड वन फैमिली, एक परिवार बोलते हो, आचरण दूसरे नहीं करते, कम से कम मुझे करना है ना, अपने से। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, हम दूसरों को आपको करना है, आपको करना है, करेगा कौन, मुझे करना है। और जितना जो करता है वो पाता है, व्हाट यू सो सो शैल यू रीप, जो बोएंगे वो काटेंगे। तभी देख लो एक करोड़पति है, एक को खाने के लिए कुछ नहीं, एक को बहुत सुंदर शरीर है लेकिन सदा बीमार, क्यों, किसने किया, भगवान ने ऐसा किया? हाँ तब कहा बाप वर्षा देने आता है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों चाहिए, चावल भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, सब्जी भी चाहिए, तीनों चाहिए ना, ऊपर से बाबा भेज देगा नहीं, थोड़ा चावल भेज देगा, सब्जी भेज देगा नहीं, बच्चे सब्जी चाहिए सब्जी बोलो, चावल चाहिए चावल का एक दाना डालो, 50 दाने लगेंगे, है ना। तो आपको बोना है ये तन, अगर निरोगी काया चाहते हो, एक का पदम गुना देता है, इस यज्ञ की एक मिनट भी सेवा करो, ये यज्ञ आपको निरोगी काया वरदान देता है, ये विधान है, बाबा नहीं देता कुछ, विधि बताता है। बच्चे धन भगवान की सेवा में, आपका नहीं, आपने लाया नहीं था, नहीं ले जाएंगे, भगवान की सेवा में कितना लगा रहे हो, एक का पदम गुना, मन कहां लगा रहे हो, किसका चिंतन कर रहे हो, सारा दिन में पूछो मेरे मन में किसका चिंतन चल रहा है, चेकिंग करो, जितना मन ज्ञान का चिंतन करते हो उतना मन बाबा का चिंतन करते हो, मन स्वच्छ, यहां मन को स्वच्छ रखते हो सदा हर्षित, मैला मन हर्षित रहेगा नहीं का? नहीं ना, सारा दिन 24 घंटा आप पूछ लो माताजी किसकी सेवा कर रहे हो, बाबा मेरी बीमारी ठीक करो, आप इनकी सेवा करो, और बाबा ठीक करे, आप इनके खेती में काम करो और ये पगार देगा आपको। तो बाबा पूछा, बच्चे ये तन किसकी सेवा में लगा रहे हो? 24 संगम युग पर 24 घंटा पूछ लो, ये तन किसकी सेवा में लगा रहे हो? बाबा ने कहा, 1 मिनट यज्ञ की सेवा करो, सेंटर हो, यहां हो, कहीं भी। तब निरोगी का बाबा ऊपर से किसी को दवाई नहीं बेचता है ना। तो आपको कर्मों की गति बताता है। ये सब कब आएगा? श्रेष्ठ स्मृति अगर है अपने आप। देख लो, अगर आप पूछेंगे रामायण अगर पढ़ा हो, देखो रामायण में एक दफा पंचवटी में राम अकेला हो जाता है, सीता तो गई, तो खरभूषण राक्षस आवाज करते हैं, हे राम, तो लक्ष्मण जाता है दौड़ के, क्या हो गया? तो लक्ष्मण जाता है, राम अकेला हो जाता है। तो अकेला राम होता है, फिर आवाज आता है तो राम भी जाता है। तो खरभूषण ये दोनों राक्षस राम के पर हावी हो जाते हैं, राम के सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं। तो क्या करो? उस समय आकाशवाणी होती, हे राम, आपके पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र यूज करो। वो अस्त्र छोड़ते सब मूर्छित हो जाते हैं। तभी आप कहते हो बाबा का टचिंग है ना। टचिंग क्या है? अगर आपने ऐसे ज्ञान एक एक रतन अपने अंदर जमा किया, ये राम को वनवास में जाते समय सब साधु संन्यासियों ने एक एक ने उसको दिया हुआ है, भूल गया समय पर। आपको भी सारे जीवन में बाबा ने कितने ज्ञान के पॉइंट सुनाए, अंदर जमा करो। ऐसी परिस्थिति आती है संसार में चलते हुए, क्या करो? कुछ भी नहीं होता है। तब बाबा जमा किया हुआ है, बाबा बच्चे तुम्हारे पास ये है, याद दिलाएगा। अगर अंदर ही नहीं है, ऊपर से आवाज आएगा, अंदर है, जागृत करेगा उसको, कहे बाबा की टचिंग, बाबा ने मुझे याद दिलाया, बाबा ने मदद किया, जमा करो। तो आई वैली में ऐसे समय पर जहां आप असमर्थ समझते अपने को, कुछ भी नहीं है, वहां स्मृति में आएगा, श्रेष्ठ स्मृति चाहिए। समझ में आया? बहुत कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा कुछ करो। एक मुरली के पॉइंट आपके पास, आपके मुख से रोज एक ना एक को सुनाना है। एक मुरली के पॉइंट आपके जेब में होना चाहिए, 10 दिन, 1 महीना भी नहीं चाहिए, 10 दिन ये दवाई करो। और ये दवाई देखना आपको क्रोध मुक्त करेगा। एक एक सिर दर्द मिटाने की अलग दवाई है, पाव दर्द के लिए अलग दवाई है। तो ये क्रोध को मिटाना चाहते हो, क्रोध बेहोशी में आता है, फिर पश्चाताप होता है, अरे ये क्यों हुआ। तो बेहोश वालों को होश में लाने के लिए संजीवनी बूटी सुंगाते दुनिया में। तो यहां संजीवनी बूटी मुरली, एक मुरली के पॉइंट बार बार याद दिलाओ, कम से कम दिन में, शाम, सवेरे, दिन में, शाम को खाना खाते हो, खाना खा नाश्ता करने बैठे, आज बाबा ने क्या कहा, दिन में खाना खाने बैठे, रात को खाना खाने, जेब में है, याद नहीं रहती आपको, ने हमें भी याद नहीं रहती है, जेब में रखो, निकाल के पढ़ो, माता एक किचन में लिख के रखो, पढ़ो, खाना खाने बैठो, एक ही, सारी मुरली पढ़ने की जरूरत नहीं, इतना सहज राजयोग है, कर सकते हैं कि कठिन? तो स्वमान से सम्मान, परिवार के अंदर पहले सम्मान, फिर बाकी के संसार में कर्म करते करते औरों के प्रति रिस्पेक्ट, क्यों? सब भगवान के बच्चे हैं, उसमें प्रजा भी चाहे, राजा भी चाहे, दास दासी भी चाहे, सब चाहिए ना, कि सब राजा ही होंगे, सब चाहिए। तो तभी कहते संसार, ठीक है। ओम शांति।
आधी अंगूर की बेल यहाँ पर थी, वो अंगूर की बेल आधी उसको काटना पड़ा, क्योंकि ये बहुत दूर तक थी ना, बहुत बड़ी थी बेल। तो इस पहाड़ी पर बाबा बैठते थे, और फिर उसके बाद जब ये हॉल बना 1976 से अव्यक्त बाप दादा यहाँ आने लगे, 75 से अव्यक्त बाप दादा यहाँ, और हम सब बच्चे पस सब इधर भरे रहते थे पूरा टाइम, और कुछ भी, कोई कुर्सी नहीं थी, एक कुर्सी रखी थी प्यारी दीदी के लिए, और कुछ भी नहीं था, सब बच्चे यहीं होते थे हम। तो ये कौन सा हाल हो गया? साकार बाबा की तपस्या भूमि पहाड़ी, अव्यक्त बाप दादा की वरदानों से भरपूर हाल। तो आपको तो डबल चांस मिलेगा, साकार बाबा के भी अनुभव, अव्यक्त बाप दादा की पालना का भी अनुभव। तो ये हॉल कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये ऐसा है जो बाप दादा ने अपने हाथों से बैठ करके इस पहाड़ी पर जाके चक्कर लगाए बैठे, सबसे मिलन मनाते थे, कोई कम बात नहीं है। ये तो ऑटोमेटिकली आपको अनुभव कराएगा। ऐसे अनुभव होंगे जो बाबा के स्नेह के झूले में झूलेंगे। लेकिन माया भी देखती है, वो क्या करती है, कहीं ऐसा ना हो झूले को थोड़ा सा इधर भी खींच ले रहे हैं, फिर माया के झूले में नहीं आना है जिसको बाबा कहते हैं। माया भी ढूंढती रहती है कौन ऐसी है जो मेरे पास जल्दी आ जाए, तो वो ध्यान रखने का है। फिर साथ साथ बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं कि बच्चे अभी जो आप भट्ठी करेंगे, ये वो भट्ठी के अंदर अपने आप को सजाने का। मैं आपको बाबा का एक संदेश सुनाती हूँ। एक बार की बात है कि एक संदेशी वतन में बाबा के पास गए और वतन में पर्दा लगा हुआ था। बाबा को बोलती, बाबा पर्दे के पीछे क्या है? बाबा ने कहा नहीं बताएंगे। बोला, बाबा मेरा दिल है देखने का। बाबा ने कहा क्यों बताएं? कहा नहीं नहीं बाबा, मैं क्या है मैं देखना चाहती हूँ। तो पर्दे के पीछे क्या था, बहुत से भाई बहने हैं, वो सजा, उनको सजाना है, सजा हुआ रूप। अच्छा, देवी देवता है, उनका संपूर्ण रूप है। किसी ने अपना मुकुट पीछे डाला हुआ है, किसी ने बाजू का इधर डाला है, किसका गले के बाजू वाला, गले का हार पांव के पास पड़ा है, किसी की चीज इधर पड़ी है, हाथों के जो डालना है, बिंदी इधर की जगह इधर लगी हुई है, जो चिंदी है वो पीछे को लटक रही है। तो उसको देख के वो इतना हंसी। बाबा कहते क्यों हंस रही हो? कहती बाबा ये सब कार्टून है, इनको ये भी पता नहीं कि बिंदी कहाँ लगानी है, इनको ये भी पता नहीं कि बिंदी कहाँ लगानी है, चिंदी कहाँ लगानी है, गले की माला कहाँ लगी, इतना भी नहीं पता है। तो बाबा ने कहा यही तो हाल है मेरे बच्चों का। क्या कर रहे हैं? बाबा ने सब कुछ दे दिया, तखत भी दे दिया, बिंदी भी दे दिया, ताज भी दे दिया, सब कुछ दे दिया है। फिर क्या करते हैं, क्या करें, तखत से उतर जाते हैं, बिंदी उतार के रख देते हैं। तो बाबा ने कहा अभी वो टाइम नहीं है कि मेरे को ये करना है वो करना है, ऐसा पूछा। अभी तो बाबा ने सब कुछ दे दिया है, ऐसा नहीं सारा दिन पूछते रहो मेरा योग लगता नहीं है क्या करूं, मेरा योग लगता नहीं मैं क्या करूं। बाबा ने तो सब कुछ दे दिया, अभी क्या करोगे? केवल इतना रह गया है उसको सेट करना है, भट्टी में सेटिंग। बाकी ये शोक हो, अभी तक अब एक ही बात करते हैं, क्या करे योग नहीं लगता है, मेरा योग बन नहीं लगता है, मैं क्या करूं, ऐसे कहते हैं ना। अब योग की भी एक कहानी, सारी कहानियां सुना देती है आपको, ठीक है? थक तो नहीं गए? नहीं, पक्का? ये रियल स्टोरी है, झूठी नहीं, सच्ची स्टोरी आपको सुना रही हूँ, सत्य कथन सुना रही हूँ। तीसरी कहानी सुनाती हूँ आपको, ये अव्यक्त बाप दादा की है। तो कोई हो गया हो एक बार ग्रुप आते, बाबा से शुरू में मिलते थे ना, ग्रुप के ग्रुप मिलते थे, उसमें एक विदेशी ग्रुप था। विदेशी ग्रुप में एक भाई कहता था मेरा योग नहीं लगता है, मैं बहुत तंग हो गया।